हरे कृष्णा। अध्याय संख्या 8 यही चल रहा है जी। श्लोक संख्या 10 ही है कि 10 के आगे भी है, 11 भी है? मुझे 11 भी बताया गया, मुझे कहा गया है कि श्लोक संख्या 10 और 11 दो करने हैं। चलिए, तो अभी तक आपने जो है 8वें अध्याय के अंदर 9 श्लोक कर लिए। किसने 9 श्लोकों की क्लासेस पूरी की पूरी, कथा पूरी की पूरी सुनी है? किसने सुपूरी सुनी हो, 1 से लेकर 9 तक के? एक हाथ है। किसने आधे अधूरे सुने? किसी ने 1 सुना, किसी ने 2 सुने, किसी ने 3 सुने? चलिए, मैं श्लोक बोलता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसके बाद इसका शब्दार्थ, फिर अनुवाद और तात्पर्य। प्रयाण काले मन सचले न भक्तया युक्तो योग बले न चैव प्रभो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्षितं परं पुरुषपयति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेन प्रवक्षये। लंबे श्लोक हैं, परंतु इसका जो शब्दार्थ पढ़ेंगे वो आप मेरे पीछे बोलेंगे। प्रयाण काले मृत्यु के समय मनसा मन से अचलेना अचल दृढ़ भक्तया भक्ति से युक्त लगा हुआ योग बलेन योग शक्ति के द्वारा च भी एव निश्चय ही भ्रुवः दोनों बाहों के मध्य मध्य में प्राणम प्राण को आवेश्य स्थापित करे सम्यक पूर्णतया सह वह तम उस परम दिव्य पुरुषम भगवान को उपैति प्राप्त करता है दिव्यम दिव्य भगवत धाम को यत जिस अक्षरम ओम को वेद विदह वेदों के ज्ञाता वदन्ति कहते हैं विशन्ति प्रवेश करते हैं यत जिसमें सतयह बड़े बड़े मुनि वीतरागा संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी यत जो इच्छन्तः इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य चरन्ति अभ्यास करते हैं तत उस ते तुमको पदम पद को संग्रहना संक्षिप्त में परवक्ष्ये मैं बतलाऊंगा। इसका अनुवाद पढ़ता हूं, वो भी मेरे पीछे दोहराइए और जो अनुवाद सुनेंगे दोहराएंगे उसको जरा ध्यान दीजिए उसके ऊपर कि क्या कहा जा रहा है। मेरे पीछे दोहराइए। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वह ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। इसका तात्पर्य पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि प्राण को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। यहां पर अष्ट चक्र योग अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 4वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षटचक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग की विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। किंतु चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षटचक्र यज्ञ की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं जिसमें प्राण को बाहों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षटचक्र योग अभ्यास ना आता हो, तो कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार तथा ब्रह्म दोनों एक रूप है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से ही गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के 2 स्वरूपों से परिचित होते हैं। ये प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचारी जीवन अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचारी सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। बिना ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए कलयुग में शास्त्रों के आदेशों अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का अन्य कोई उपाय नहीं। कुछ समझ में आया बताइए? हमने पढ़े 9 श्लोक, क्या समझ में आई आज बात? 9 के संदर्भ में और आज के जो श्लोक हैं इसमें क्या बात समझ में आ रही है, क्या बताया जा रहा है? हर स्थिति में कितने लोग करते हैं? चाहिए तो बहुत कुछ। रूपा जी स्पष्ट लिख रहे हैं। देखिए एक बात, अगर आपने 9 श्लोक पहले के किए हैं तो उसमें एक बात समझ जाइएगा कि 8वें अध्याय के अंदर आपको इसका चैप्टर का नाम है भगवत प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है इसका उपाय बताया जा रहा। भगवत गीता के अंदर 7वें से लेके 12वां अध्याय जो है भक्ति योग है। भक्ति योग का मतलब है भजन क्रिया, कि आपको भगवान को प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट करने, मुख्य बात यह हो रही है। पहले से लेके 6 अध्याय तक आपको बताया जा रहा है भगवान का संबंध, कि भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित करना है, कर्म योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, आपका संबंध क्या है जीव और आत्मा का, जीव का और शरीर का भेद क्या है, जीव शरीर और भगवान का आपस में संबंध क्या है, ये सारी चर्चा जो है पहले से लेके और छठे अध्याय में हुई है। इस पहले से लेके छठे अध्याय का जो ज्ञान है संबंध ज्ञान कहलाता है, और संबंध ज्ञान की अगर प्राप्ति करनी है तो आपके स्मरण में, आपकी आराधना में भगवान की कौन सी ड्यूटी रहनी चाहिए और ये ज्ञान किसके द्वारा आपको प्राप्त कराया जा रहा है। संबंध ज्ञान दिया जा रहा है आपको, मोस्टली अगर आप चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर तो आपको सनातन गोस्वामी के माध्यम से ये ज्ञान मिलता है। और सनातन गोस्वामी की जो आराध्य अर्च विग्रह हैं वो कौन से हैं, मदन मोहन जी वृंदावन के अंदर जो करौली ले जाएंगे। तो आपका ध्यान जो है जब संबंध ज्ञान प्राप्त करना है तो मदन मोहन जी के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो हम सातवें से लेकर बारहवें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर आपको जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वो दिया जा रहा है रूप गोस्वामी के द्वारा। और रूप गोस्वामी जो हैं उनकी जो ड्यूटीज हैं, स्मरणीय ड्यूटीज हैं, वो है राधा गोविंद देव जी। और इसके बाद चर्चा आती है आपको जो अंतिम चर्चा है कि जो 13वें से लेकर 18वें अध्याय का ज्ञान है वो दिया जा रहा है आपको। प्रयोजन क्या है आपका, आपका प्रयोजन क्या है, आप किस प्रयोजन से संबंध ज्ञान प्राप्त करें और किस प्रयोजन से आप अभिधेय अर्थात भजन क्रिया करें उसका प्रयोजन क्या है, और उसकी जो स्मरणीय ड्यूटीज है राधा गोपीनाथ जी। अब आपको जो है इसके अंदर जो आज का हम चर्चा कर रहे हैं आठवें अध्याय की, आठवें अध्याय के अंदर आपको ज्ञान दिया जा रहा है कि आपको भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है। अब भगवान की प्राप्ति करनी है तो चर्चा किस बात पे हो रही है, चर्चा हो रही है यहां पर पांचवें श्लोक से अगर लेके चलेंगे तो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, जीवन के अंतिम समय में जो शरीर का त्याग करता है, कंडीशंस, कंडीशन क्या अप्लाई करी कि मेरा स्मरण करते हुए। और दो पॉइंट आए, एक है कि बिना मेरा स्मरण किए शरीर का त्याग करना, और दूसरा है मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करना। तो जो व्यक्ति भगवान का स्मरण न करके संसारिक वस्तुओं का स्मरण करता है, दूसरे जीवों का स्मरण करता है तो उसके भाव को प्राप्त होगा। परंतु भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे धाम में आ जाता है। उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया, मेरे धाम में आने का तरीका क्या है, कंडीशंस अप्लाई, स्टार लगा दिया एक, मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करो। बड़ी सिंपल बात है, मेरा स्मरण करते हुए। फिर उन्होंने इसके बाद बोला, फिर इसको डिफाइन किया, इसको एक्सप्लेन किया, फर्दर समझाया, क्या समझाया कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है, डाउट नहीं रखना, निश्चित, मन के अंदर संदेह नहीं रखना, शुभा नहीं, संदेह नहीं, डाउट नहीं, शक नहीं, ये डेफिनेट है कि अगर तुमने किसी और भाव का स्मरण किया है, किसी और का स्मरण किया है तो उसके भाव को प्राप्त हो गए। भरत महाराज ने हिरण के बच्चे का स्मरण किया था तो हिरण की योनि प्राप्त करनी पड़ी, परंतु अगर मेरा स्मरण करोगे तो मेरे भाव को प्राप्त होगे। ये बात भगवान ने फिर एक डेफिनेटिव रूप से आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में। अब यहां चर्चा आती है इसके बाद कि आपका स्मरण तो करना है, कब करना है और कैसे करना है। इतनी बात समझ में आ गई मुझे, मृत्यु के समय आपका स्मरण करना है, कैसे करना है। मैं सडन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया, समझ में नहीं आया कि मौत हो गई, जब तक समझ में आता तब तक तो प्राण जो है शरीर छोड़ चुके थे, खत्म हो चुका था सब। मैं अस्पताल में भर्ती हो गया, बेहोश, नलकी लगी हुई है, खून चढ़ रहा है, पेशाब में नलकी लगी हुई है, यहाँ ग्लूकोज चढ़ रहा है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, मतलब बुरे हाल हो रहे हैं वहां, तो मेरे को अपना ही होश नहीं है, तो आपके नाम का होश किसे रहेगा? कौन आपका नाम लेगा? कौन स्मरण करेगा? अगर वो मृत्यु भाई साहब घर में हो जाती है, अंतिम समय है, डॉक्टर कहते हैं, हम भी कहते हैं, जो डॉक्टर मैं भी कहता हूं, इनकी सेवा कर लो, अब इनमें चलने वाली गाड़ी नहीं है, ये एक दिन दो दिन चार घंटे आठ घंटे बारह घंटे पांच दिन अपनी सेवा कर लो आप। अस्पताल वाला को भर्ती करेगा नहीं, कि मुर्दे को भर्ती कौन करेगा, और घर में आप कुछ कर नहीं पाओगे, लास्ट टाइम से लास्ट टाइम पे सेवा कर लो। तो बंदा बेहोश है, घुड़ घुड़ की आवाजें आ रही है, घुड़ 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 हो रही है, सांस घुड़ा जा रहा है, और ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है, होश तो उसे है नहीं, तो भगवान का नाम कैसे स्मरण करेगा? इसका मतलब है, अगर सडन एक्सीडेंट हो जाता है तब भी स्मरण नहीं कर पाता है, बेहोश होता है तब भी स्मरण नहीं कर पाता है, वो बेहोशी चाहे घर में हो रही है और चाहे अस्पताल में हो रही है, दोनों स्थितियों में गाड़ी उसके हाथ से निकल गई, तो भगवान के धाम तो जा ही नहीं सकता, दिस नो चांस। लक्ष्य क्या है? थोड़ा बहुत जो अध्यात्म का ज्ञान रखते हैं, सुनते सुनाते हैं, नहीं नहीं भगवान अपने चरणों में स्थान दे, किसी के उठाले में गए, क्रिया में गए, तेरहवीं में गए, ग्यारहवीं में गए, शोक सभा में गए, प्रेयर मीटिंग में गए, वहां क्या बात हो रही है, हे भगवान इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। तो सब लोग मिलके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस आत्मा को आप 84 लाख योनियों में न भटकाने के बजाय अपने चरणों में स्थान दे देना, जिससे इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कंडीशन अप्लाई, मेरे कहने से आपको बैंक से पैसा नहीं मिलने वाला, आपके अकाउंट में है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिले। तो अगर 1000 आदमी 2000 आदमी 1000 आदमी 1.25 करोड़ आदमी मिलके ये प्रार्थना करें कि इसको अपने चरणों में स्थान देना, तो स्थान नहीं मिलने वाला। स्थान कब मिलना है? जब उसके कर्मों के अनुसार उसने ऐसा कार्य किया है कि इस बंधन को मुक्त, इस बंधन से मुक्त हो गए, भगवान के धाम जा सके। और कार्य क्या है? कि जीवन के अंतिम समय मेरा स्मरण करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब भगवान कहते हैं कि आपको स्मरण कैसे करना है? मैं तो जी 3 से 4 शाम को स्मरण करता हूं, वेला होता हूं ना, तब बाकी तो सारा दिन काम ही होते हैं मेरे पास, बाकी सारा दिन तो व्यस्त है, सवेरे उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, किचन में गए, टिफिन पैक किया, नाश्ता बनाया, कपड़े धुलवाए, उसके बाद ये किया वो किया, अगर शाम हो गई, अब 3 से 4 में फ्री होता हूं, 3 से 4 में फ्री होता हूं, फ्री होती हूं, तब मैं भगवान का स्मरण करता हूं। फिर 4 बजे के बाद फिर मुझे शाम के काम करने होते हैं, फिर रात पड़ जाती, 11-12 बज जाते हैं, तो मैं तो टाइम होता ही नहीं। जब आप सोचिएगा कि 1 घंटे के लिए आपने 24 घंटों के अंदर भगवान का स्मरण किया और 23 घंटे आपने संसार का स्मरण किया, तो संसार मिलेगा कि भगवान मिलेंगे? क्या मिलेगा? भगवान ने उसका उत्तर दिया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युद्ध च मई अर्पित मनोबुद्धि ना में शी असंशय। संशय नहीं है किस बात में? कि मन और बुद्धि को मेरे में अर्पित करके हर समय, तस्मात सर्वेशु कालेशु, सर्व काल में हर समय हर क्षण हर पल मेरा स्मरण करना। उत्तर दे रहे भगवान, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में इस बात का उत्तर दिया उन्होंने कि मेरा स्मरण करने का एक ही तरीका है कि हर काल में हर क्षण में हर पल मेरा स्मरण होना चाहिए। फिर आगे इंस्ट्रक्शन दिया, माम अनुस्मर युद्ध च। यहां युद्ध का मतलब लड़ाई मत समझिए, युद्ध का मतलब है कर्तव्य का पालन, करने योग्य कार्य, अर्थात जो भी आप कार्य कर रहे हो वो कार्य करते हुए आपको मेरा स्मरण करना है। पर यहां भी भगवान ने एक कंडीशन लगाई, एक शर्त पैदा कर दी, दो स्टेटमेंट है, मेरा स्मरण करते हुए कर्तव्य करो, कार्य करो, सिंपल भाषा और करता हूं, मेरा स्मरण करते हुए कार्य करो, कार्य करते हुए मेरा स्मरण करो, इन दोनों में क्या भेद है? मेरा स्मरण करते हुए कार्य करो और कार्य करते हुए मेरा स्मरण करो, इन दोनों में क्या भेद है? व्हाट इज द डिफरेंस? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। क्या अंतर है जी? क्यों? अभी उनका उत्तर सुनिए जरा, सुषमा माता जी का उत्तर सुनिए। ये तो गलत बात कह रही हैं आप, आपकी स्टेटमेंट गलत हो गया। सी थिंग्स आर वेरी सिंपल, बहुत आसान चीजें हैं समझने के लिए, सिर्फ क्या है मन और बुद्धि भगवान को अभी अर्पित नहीं करी तो समझ में नहीं आ रही। समझ में कब आएगी? अगर आप ये समझो कि आपको भगवत गीता समझ में आ जाए तो समझ कब आएगी आपको? उसको समझने का फॉर्मेट क्या है? तो श्लोक बताता हूं फिर आपके बात का उत्तर दूंगा। समय क्या हो गया? लेट तो जल्दी तो नहीं हो गया? यह है 15 मिनट। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 43वें श्लोक में, यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। फिर कहते हैं यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। ज्ञान कर्म करने का कौन देगा? हु इज गोइंग टू गिव? मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे। किस ज्ञान से? जो ज्ञान मैं दे रहा हूं। आपके द्वारा दिया ज्ञान नहीं, आपके द्वारा दिया गया नहीं, मेरे द्वारा दिया, इनके द्वारा दिया गया नहीं। ज्ञान कौन देगा? भगवान, किसी के माध्यम से। मेरा माध्यम हो सकता है, गुरु का माध्यम हो सकता है, शिक्षा गुरु का माध्यम हो सकता है, वो आपको ज्ञान देंगे। अब आपसे एक सवाल करता हूं, आप ज्ञान और बुद्धि में क्या भेद समझते हैं? बुद्धि एक यंत्र है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आप उसको घर में आके सवाल कराते हो, एक सवाल कराया फिर उसी का दूसरा कराया, फिर उसे रहते को तीन बार करा, समझ में नहीं आता क्या? बुद्धू हो गया। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ सिस्टम आप तीन बार बता चुके हो, चार बार बता चुके, और पांचवें बच्चा फिर गलत करता है तो आप क्या बोलते हो? You are giving imparting knowledge, ज्ञान दे रहे हो आप, पर मैं उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा, उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहा, क्या बोलते हो? बुद्धू हो गया, मतलब बुद्धिमान नहीं, इंटेलिजेंट नहीं। यहां भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान मैं दे रहा हूं, परंतु उस ज्ञान को समझ पाना कैसे पॉसिबल है? तुम तो माइक बुद्धि, भौतिक बुद्धि लगा के चल रहे हो ना। तो भगवान फिर जो है जाके बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम् तदानी बुद्धि योगंतम येन मामोपयान्ति ते, जो निरंतर लगातार प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो उस ज्ञान को समझ के मेरे पास आ सकता है। तो इंटेलिजेंस कौन देगा? भगवान देंगे। और भगवान यहां पे ज्ञान दे रहे हैं तस्मात सर्वेशु कालेशु, कि आपको हर क्षण हर पल मेरा चिंतन करना चाहिए, सब्जेक्ट टू कंडीशंस क्या अप्लाई कर रही है कि आप अपने मन और बुद्धि को अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करके मेरे में लगा कर। अब प्रश्न आता है, मैं अपना कर्तव्य पालन करते हुए कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करता हूं, तो आपके लिए जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट बात है, जो मुख्य बात है, वो कर्म करना हो गया कि भगवान का स्मरण हो गया? नहीं हुआ स्मरण। मैं कर्म करते हुए भगवान का स्मरण कर रहा हूं, मेरा काम क्या है? कर्म करना। पहले प्राइमरी जॉब क्या है? कर्म करना। मैं भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करता हूं तो प्राइमरी जॉब क्या है? भगवान का स्मरण। तो स्मरण करते हुए कर्म करना और कर्म करते हुए स्मरण करना सुनने में भी ऐसे लगते हैं, परंतु वैल्यू में दोनों में भेद है। भगवान का स्मरण मुख्य है तो स्मरण भूलेगा नहीं, काम कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, छूट सकता है, नहीं भाई मेरे को हर समय भगवान का स्मरण करना। स्मरण कब होता है? स्मरण करने की सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है? या भगवान का स्मरण कर सके उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं प्रेम नहीं है, प्रेम तो स्मरण करने से डेवलप होता है। आप घोड़े का गाड़ी मत लगाइए, नहीं होता, नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं होता। प्रभु जी दुख में विचलित हो जाता भगवान को भूल जाता आदमी, सुख में विचलित हो जाता क्या जरूरत है भगवान की? स्मरण करने के लिए कंडीशन क्या है? आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, बात समझ में आ जाएगी। एक लड़का और एक लड़की जो है आपस में पार्क में एक दूसरे को देखते हैं, परंतु संबंध नहीं है अभी उनका। कभी कभी याद आती है, फिर अपने कामों में लग जाता है, लड़की की याद निकल जाती दिमाग से। पता लग गया कि इस लड़की से मेरी शादी होने वाली, एक संबंध स्थापित हो गया। रात में 2-2 बजे तक टेलीफोन पे बात होती है, नींद नहीं आती। माता पिता कहते हैं टेलीफोन का बिल बड़ा आ रहा। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते लड़की का स्मरण रहता। कब हुआ? संबंध बना तो। जब तक आपका भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा, आप भगवान के साथ अपना संबंध नहीं समझ लेंगे, तब तक उसका स्मरण नहीं कर पाएंगे। स्मरण नहीं हो पाए, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए। तो भगवान का स्मरण करने के लिए भगवान से संबंध स्थापित करना। अब यहां चर्चा आ रही है, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचलित भगवान भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। क्या है? मन को स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर। निरंतर का मतलब होता है स्मरण करने में गैप नहीं होना चाहिए। 3 से 4 वाला फार्मूला नहीं है। चलो मैं 10 से 10:30 करता हूं, 11 से 11:30 करता हूं, 12 से 12:30 करता हूं, 1 से 1.5 करता हूं, ये भी नहीं। इट हैज टू बी ए नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूअस स्मरण। एक क्षण के लिए भी गैप नहीं होना चाहिए। अब इसमें चर्चा आती है इसके बाद कि करना किसका है, कैसे। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं परम पुरुष का ध्यान। वो परम पुरुष जो सर्वज्ञ है, पुरातन है, नियंता है, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में मेरा स्मरण करना। आपको समझना है कि मैं कौन हूं। मैं कौन जो तेरे सामने इस रथ के ऊपर विराजमान है, कृष्ण श्याम सुंदर सगुण साकार स्वरूप में, निराकार नहीं। यहां भगवान ने जो है वो सारे स्वरूप बता दिए जिसमें तुम्हें मेरा स्मरण करना। अब भगवान बताते हैं यहां पर आके कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च। जो चर्चा 6 अध्याय के अंदर ध्यान योग में हुई है उसका यहां एप्लीकेशन बताया जा रहा है। उसका एप्लीकेशन बताया जा रहा है कि आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेप हैं जिनकी आपके पास एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, जो कि आज के युग में संभव नहीं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा इसके, 6 अध्याय आप कर चुके हैं, उसको करने में 4 घंटे फिर चाहिए। कि आपको यम का पालन करना है, अर्थात अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। 5 नियम होते हैं यम के अंदर जिनका पालन करना। फिर आपको 5 अंग जो है नियम के हैं, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणिधाम है। फिर आसन है, कैसा आसन होना चाहिए, और प्राणायाम अर्थात बाहरी वायु को भीतर लेके जाना और फिर अंदर की वायु को बाहर लेके आना, जिसमें कि कुंभक है, रेचक है, पूरक है। ये 3 स्टेप होते हैं, इनको किस तरीके से करना है, कौन सी वायु कैसे जाती है, कहाँ जाती है, सब अंडरस्टैंड करके तब आपको आते हैं प्रत्याहार के लेवल पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आपका अष्टांग योग फेल है अगर प्रत्याहार नहीं कर पाए। और प्रत्याहार का मतलब होता है मन को एकाग्र करके इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना। टाइम शॉर्ट, तुम कागज लिए बैठे हो इसलिए मैं कह रहा हूं 10 मिनट में समाप्त कर दूंगा, 9 बजने में 10 मिनट। कि आपको प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना, क्योंकि अगर आपकी इंद्रियां चाहे ज्ञान की हैं चाहे कर्म की हैं, अगर इंद्र विषयों पे लगी हैं तो भगवान पे नहीं लग सकती। एक टाइम पे एक ही काम तो करेगी ना। आपने आंख के साथ या तो फिल्म हीरोइन की फोटो देखोगे या भगवान की देखोगे। ये तो है नहीं कि एक आंख से आपको जो है एक सामने देखते हुए दोनों फोटो दिखाई दे जाए। तो यहां से आंख हटाओगे तभी तो दूसरी फोटो दिखाई देगी। तो जब तक ध्यान आपका जो है संसार से नहीं हटेगा तब तक भगवान पे नहीं लगेगा। तो भगवान पे ध्यान लगाने के लिए संसार से हटाना है, और संसार से हटाने का मतलब है प्रत्याहार, अर्थात आपको जो है इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाना पड़ेगा। इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाकर भगवान पे लगाना पड़ेगा। जब आप जो है ये कार्य कर लोगे कि अब आपका जो है इंद्रियां जो है वो भगवान के प्रति समर्पित हो गई, उनके ऊपर लग गई, तब आप सोच सकते हो कि अब मैं जो है भगवान के ध्यान में लग सकता हूं, उसके बिना नहीं लग सकता, नॉट पॉसिबल। अब आती है बात यहां पर कि प्राणों को बाहों के मध्य में स्थिर कर लेना। षट चक्र योग की चर्चा हुई है, षट चक्र योग क्या है और आज्ञा चक्र क्या है, इसकी चर्चा प्रभुपाद जी परपट के अंदर कर रहे हैं। प्राणों को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं, जहां पर षट चक्र योग अभ्यास का प्रस्ताव है। तो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि षट चक्र योग क्या है, और फिर बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी ने कही है जो आपको ध्यान पूर्वक बार बार पढ़नी चाहिए, उसको मैं रिपीट करूंगा यहां। पहले आप छह चक्र है कुंडलिनी को जागृत करना, ठीक है। उसमें पहला चक्र होता है मूलाधार, वो चक्र जो है आपके गुदा और उपस्थ अर्थात जो सेक्स ऑर्गन्स हैं और जो गुदा है उसके बीच में स्थित होता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान, जो कि आपकी जो है नर्व्स के अंदर है और कार्टिलेजेस सॉफ्ट बोन्स होती हैं उनके अंदर रहता है। तीसरा है मणिपुर चक्र, जो कि नाभि में रहता है। तो पहला चक्र जो है वो अर्थ एलिमेंट जो पृथ्वी है उसको रिप्रेजेंट करता है, दूसरा चक्र जो है जल को रिप्रेजेंट करता है, और जो नाभि में रहता है वो फायर अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा है अनास्था चक्र, जो कि आपके हृदय में रहता है। फिर विशुद्ध चक्र है जो गले में रहता है, ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है। हृदय वाला है वो वायु को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र, जो कि दोनों बाहों के मध्य में है। जब इस चक्र के ऊपर आप अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं, तब आप संप्रज्ञात समाधि के लेवल पे पहुंच सकते हैं, जिसको अष्टांग योग में भी बताया गया है। और जब इसके बाद आप जो है सातवां चक्र है फाइनल, वो है सहस्त्र चक्र, जिसको कि आज भी कहते हैं आपके प्राण ब्रह्मांड को फोड़ के बाहर निकल गए, वो ब्रह्मांड का स्थान है, वो सर के ऊपर मध्य में होता है। अब आती है बात कि जब आप भगवान का स्मरण करेंगे, आप स्मरण करते करते समाधि की स्थिति में जाएंगे, तो समाधि की स्थिति में जो दो शब्द इस्तेमाल होते हैं संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, उनका शॉर्ट के अंदर अर्थ क्या है। ध्यान लगाने के तीन अंग हैं, एक है ध्यान करने वाला, दूसरा है ध्यान का तरीका प्रोसेस, और तीसरा है ध्यान का एम ध्येय, किसके प्रति ध्यान लगा रहे हो। मैं ध्यान करने वाला हूं, ध्यान करने का प्रोसेस अडॉप्ट करता हूं, और किसके प्रति करता हूं, ये तीन है। अब इसके अंदर जो सीढ़ी क्या है, सीढ़ी है सबसे पहले अपने आप को भूलना। मैं रोज मेडिटेट करता हूं, सुदर्शन क्रिया करता हूं, ये क्रिया करता हूं, वो क्रिया करता हूं, मेडिटेट में अपने आप को भूलते हो क्या, भूलते हो, इज इट पॉसिबल। मैं ध्यान में हूं, इस बात को भी भूल जाना, मैं ध्यान में हूं इस बात को भी भूल जाना। तो याद क्या रहता है, केवल ध्येय एम जिसके प्रति ध्यान लगाया जा रहा। जब आप भगवान के प्रति ध्यान लगा रहे हो तो केवल वही याद रहने चाहिए, और ना अपना याद रहना चाहिए और ना ध्यान लगाना मैं ध्यान लगा रहा हूं ये याद रहना चाहिए। तो संप्रज्ञात के अंदर जो है आपको ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों का स्मरण रहता है, और जब आप असंप्रज्ञात पे आते हो तो केवल ध्येय का स्मरण रहता है और कोई स्मरण नहीं रहता। दिस इज द फाइनल स्टेज। अब प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता। अब इसमें एक बात निकल के आती है, पृथ्वी ने भगवान से जाके प्रश्न किया कि मुझे आप बताइए कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, आपका ध्यान करने में पॉसिबिलिटी उसके पास नहीं है, आपका ध्यान नहीं कर पाता है, तब उसकी क्या गति होती है, ये बताइए। और आप भगवान से जो है प्रार्थना कर रही है और इसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश कर रही है कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, आपका स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, और बेहोशी की स्थिति क्या होती है, सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति, तब उसकी क्या गति होती है, वो तो भगवान धाम जा ही नहीं सकता। बेहोश पड़ा अस्पताल में, घर में पड़ा है तो घुरघुर हो रही है, सडन एक्सीडेंट हुआ तो ठा हो गया, तो आपके धाम कैसे जाएगा। तो वरा भगवान उत्तर देते हैं जो इन श्लोकों में हमने पढ़ा, निरंतर मेरा स्मरण। वरा भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्वस्थ अवस्था के अंदर निरंतर मेरा स्मरण करता रहता, स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है, मेरे नाम का जप करता रहता है, तब जीवन के अंतिम समय में जब वो कफ और वात आदि दोषों से घिर जाता है और मेरा नाम स्मरण करने में, मेरा स्मरण करने में, नाम लेने में असमर्थ हो जाता है, तब अगर मैं उसका स्मरण ना करूं तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश कृतघ्न और कोई नहीं होगा। आई रिमेंबर हिम, जब वो जब सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, मेरा स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, कंडीशन अप्लाई कि स्वस्थ अवस्था में उसने निरंतर मेरा स्मरण किया है, तब मैं उसका स्मरण करता हूं और उसे परम गति की ओर अपने धाम ले जाता हूं। आप सोचिए कि ये जो स्मरण की बात चल रही है, स्मरण करना कैसे है, स्मरण आखिरी समय के ऊपर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगर आपने सारा जीवन किया है तो आप सफल हो, यू डोंट हैव टू बॉदर कि आखिरी मिनट पे क्या होने वाला है, तब मेरे पे ये कंडीशंस अंतिम समय मेरा स्मरण करना अप्लाई नहीं करती। शर्त क्या है जो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। 14वां श्लोक क्या कहता, पहले दो थोड़ी टाइम है, 5 मिनट का और कर लेना थोड़ा सा चर्चा, यह जो अगला वाला श्लोक है 11वां, इसकी चर्चा नहीं हुई, यहां चर्चा एक आ रही है ओंकार। ओंकार को जो है कहा गया है ब्रह्म, अर्थात भगवान का ये निर्विशेष अर्थात निराकार स्वरूप है भगवान, परंतु भगवान का सगुण साकार स्वरूप ना होके इसको निर्गुण निराकार स्वरूप की व्याख्या की गई है। तो ओंकार शब्द का अर्थ क्या है, ओम चर्चा करते हैं ना, मैं सवेरे बैठ जाता हूं ध्यान लगाने के लिए और जोर जोर से लंबे लंबे सांस लेके बोलता हूं ओम, वो ओम का अर्थ क्या है, अब कैसे किसका स्मरण कर रहे हो, ओम से भगवान का पूर्ण स्मरण कैसे हो जाता है, निराकार स्वरूप का है नो डाउट, परंतु भगवान का स्मरण है। तो इसमें कहा गया है उपनिषद के अंदर, गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद है अथर्ववेद के अंदर, उसके अंदर आ उ मा तीन शब्द से ओम बनता है, ऊपर जो आता है अर्धचंद्र उसमें जो है दो चीजें हैं, एक एक ऐसा गोल डंडा, आधा गोल डंडा होता है जिसको तुरीय कहते हैं और ऊपर एक बिंदु होता है, ये टोटल जो है ओम शब्द है। इसके अंदर आ जो है, आ जो आ शब्द है इसके अंदर, वो बलराम जी के लिए प्रयुक्त होता है, संकर्षण रूप में होता है, अकारात्मक है, और यही जो आ है जब राम अवतार होता है तो लक्ष्मण जी के लिए प्रयुक्त होता है। ऊ शब्द जो है प्रद्युमन जी के लिए है और राम अवतार में शत्रुघ्न जी के लिए है, इसको उकारात्मक कहते हैं। इसके कुछ डिटेल्स हैं कि इसका मतलब है मन के अंदर स्थित है, अंतर की सब बातें जानते हैं, अंत प्रज्ञ है। जब मां की चर्चा होती है तो मां का है मकारात्मक, अनिरुद्ध जी के लिए है, प्राज्ञ रूप है, बुद्धिमान है, और भरत जी के लिए इस्तेमाल होता है जब ये हम राम अवतार की चर्चा करते हैं। कि जो अर्ध चंद्र के अंदर तुरी है, जिस तरह का गोला बनता है, वो इस्तेमाल होता है वासुदेव के लिए और राम अवतार के अंदर राम जी के लिए, और जो पर बिंदु है वो नाथ स्वरूपा राधा जी है, राम अवतार में सीता जी है। इसलिए ओंकार शब्द का भी जो उच्चारण करते हैं वो पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण करते हैं, परंतु यहां पर चर्चा हो रही है कि उनको जीवन के अंतिम समय में स्मरण करना है, उसमें तो टाइम ही नहीं है, तो बेहोश पड़े हुए हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए जो है उन्होंने कहा है कि अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिसमें कि कोई व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। और जो 8वें अध्याय का 14वें श्लोक की चर्चा हो रही है, जहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इसके अंदर जो है आपको सही ज्ञान दिया गया है कैसे आपने करना है, तो वो क्या है, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्य अहम सुलभपाथा नित्य युक्त योगिना। बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको समझ लेंगे ना तो समझ लीजिएगा कि बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे एकदम। अनन्य चेता, चेता मतलब चिंतन, चेता मतलब चेतना, तेरी चेतना में तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। एक सिंपल स्टेटमेंट दे दिया, मेरे सिवाय और कोई नहीं। तो मेरे सिवाय क्या है भाई? आपके सिवाय आप किसकी मनाही कर रहे हो, पता होना चाहिए ना, तभी तो उससे ध्यान हटाएंगे और आप पे लगाएंगे। तो भगवान यह कहते हैं 14वें अध्याय के अंदर जो है 26वें श्लोक में जाके ब्रह्म भुआए कल्पते, और साथ में कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति जो है अव्याभिचारिणी होनी चाहिए। तो व्याभिचार क्या है? स्मरण जो है अव्याभिचारिणी होना चाहिए, भक्ति अव्याभिचारिणी होनी चाहिए, तो व्याभिचार क्या है? पर ये दो तीन शब्द समझ में आ जाए तो सारी बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से संबंध स्थापित करता है अपनी पत्नी को छोड़ के तो व्याभिचारी कहलाता है, और जब कोई स्त्री किसी पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो व्याभिचारिणी कहलाती है। इन दो शब्दों से, दो अर्थों से निष्कर्ष ये निकलता है कि आप अपने को छोड़ के पराये के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। सिंपल भाषा में अपने को छोड़ के, अपना पति अपनी पत्नी मतलब उनको छोड़ के पराये के साथ संबंध स्थापित करना व्याभिचार कहलाता। आत्मा अविनाशी है, भगवान भी अविनाशी है, दोनों अविनाशी हैं। तो दोनों अविनाशियों का संबंध है। भगवान कहते हैं ममय वंश जीवलोके जीवभूत सनातनी, मेरा ही अंश है, तो मेरा संबंध केवल भगवान के साथ हो सकता है। अगर मैंने भगवान को छोड़ के किसी दूसरे के साथ संबंध स्थापित किया है तो मेरा संबंध जो है व्याभिचारी है। वो दूसरा कौन है? ये भौतिक संसार। शरीर भी दूसरा है क्योंकि भौतिक संसार का ही अंश है। अगर मैं शरीर के अंदर बैठे भगवान से संबंध ना स्थापित करके शरीर से ही संबंध स्थापित किए रहता हूं, भगवान का स्मरण नहीं करता, पूजा नहीं करता, अर्चना नहीं करता, उनके बारे में जानता नहीं, तो मेरी भक्ति जो है व्याभिचारिणी है, वो अव्याभिचारिणी नहीं। अन्य के अंदर फिर बाकी जीव भी आते हैं, बाकी जीवों में देवता भी आते हैं। तो मुझे किसी भी जीव के साथ संबंध, मुझे नॉर्मली जो रिलेशनशिप है मेंटेन करना है, परंतु समर्पण जो है मेरा वो केवल भगवान के प्रति होना चाहिए। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है, एक स्त्री का विवाह होता है, ससुराल में जाती है तो संबंध सबके साथ है, सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी नंद नंदोई बहुतों के साथ संबंध है, सबको आदर देती है, मान देती है, सम्मान देती है, प्रणाम करती है, चरण छूती है, परंतु समर्पण केवल पति के प्रति करती है, किसी और के प्रति नहीं करती। तो इसी तरीके से हमें सबको आदर मान सम्मान देते हुए संबंध केवल जो है, समर्पण जो केवल है भगवान के प्रति करना और किसी के प्रति नहीं करना, तब हमारी भक्ति जो है अव्याभिचारिणी बनेगी। अर्थात मेरे चिंतन में भगवान के सिवाय और शरीर भी नहीं होना चाहिए, मेरे चिंतन में संसार नहीं होना चाहिए, मेरे चिंतन में केवल भगवान होने चाहिए। सततम लगातार, एक क्षण का भी गैप नहीं। और क्षण कितना बड़ा होता है? अगर आप कमल का पत्ता लेते हैं उसमें पिन लगाते हैं तो एक क्षण हो जाता है, पिन पार जाती दूसरा क्षण हो जाता है, बाहर निकलती है तीन क्षण हो जाते हैं। इतना समय भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। तो अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः, माम मतलब मैं कृष्ण चंद्र जो तेरे सामने श्याम सुंदर स्वरूप में सगुण साकार रूप धारण किए खड़ा हूं, बिंदु पे नहीं, निराकार पे नहीं, मेरे पे नित्यशः। नित्यशः मतलब हर समय नियमित रूप से, कोई क्षण भी उसके बगैर नहीं होना चाहिए। तस्या अहम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिना, नित्य युक्तस्य मतलब हर क्षण मेरे से युक्त रहना है। कैसे? योगना भक्ति योग के द्वारा, प्रेमयी सेवा के द्वारा। कंपल्शन में सेवा नहीं करनी मेरी, मजबूरी में नहीं करनी, वो नाराज हो जाएंगे इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं, उन्होंने कहा था मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरे मन का भाव है भगवान की सेवा करना, क्योंकि मैंने अपना संबंध समझ लिया है कि भगवान मेरे पिता हैं, वो स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। मिलेगा क्या? तस्या अहम सुलभ पार्थ, हे पार्थ। पार्थ शब्द क्यों इस्तेमाल किया? प्रथा पुत्र होने के नाते, क्योंकि माँ का नाम कुंती भी था, माँ का नाम प्रथा भी था, वो प्रथा जिसने अपने सारे जीवन में अनेक कष्ट सहे पर कष्टों को सहते हुए मेरा स्मरण कभी नहीं छोड़ा, तो उस प्रथा के पुत्र हो, अर्जुन को रिमाइंड किया। अर्जुन भी कह सकते थे नहीं, प्रथा कहा कि तुम उस प्रथा के पुत्र हो जिसने कष्ट सहते हुए भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। और फिर कहते हैं तस्या अहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ कैसे? या तो तुमको तुरंत अपने धाम ले जाऊंगा, या तुम पुकारोगे और मैं चला आऊंगा। तुमने पुकारा और मैं चला आया। पर द्रौपदी उलझ गई भगवान से। द्रौपदी ने कहा सॉरी, मेरा वस्त्र हरण होता रहा और आप लेट आए। अरे उत्तरा ने आपको पुकारा तुरंत चले गए, मैंने पुकारा तो लेट आए, क्यों? बहन कहते हो, कृष्ण कहते हो, मुझे आदर मान सम्मान देते हो और आते लेट हो, आते लेट हो। भगवान ने कहा यस, जब अक्षय पात्र के समय दुर्वासा मुनि तेरे यहां आए थे 10,000 ऋषियों के साथ, तब तूने मुझे पुकारा था, तो मैं एक क्षण में आया था कि नहीं आया था? यहां आए थे। फिर ठीक है, आए हो गए, अब तो नहीं आए, वस्त्र हरण हो रहा था, एक वस्त्र थी, रक्त वाला थी, नासिक में चल रही थी, एक वस्त्र पहना हुआ था, खिंच जाता तो भरी सभा में नग्न हो जाती, आपने कहा मुझे बचाया। बोले देख, मैंने कहा है अनन्य चेता, तेरे चिंतन में मैं नहीं था, पांचों पति थे, तूने किसकी ओर देखा, मेरे को स्मरण किया क्या? तूने स्मरण किया अपने पांचों पतियों का नहीं, बात बनी, तूने स्मरण किया गुरुजनों का, कृपाचार्य द्रोणाचार्य, नहीं बनी बात। फिर तूने स्मरण किया पितामह का, विदुर जी का, नहीं बनी बात। फिर तूने स्मरण किया राजा का, नहीं बनी बात। फिर अपने को भरोसा किए रही, दोनों हाथों से धोती पकड़े रही, दांतों से धोती पकड़े रही, फिर एक हाथ से धोती पकड़े रही। अरे मैं तो बेचैन था तेरे पास आने के लिए। रानियां मुझसे पूछती हैं, तुम द्वारका के अंदर महल के अंदर जो है चक्कर काट रहे हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो? मेरी बहन मुझे बुला रही है, पर समर्पण नहीं किया, अभी सरेंडर नहीं हुई हो, अभी अपने पे भरोसा किए बैठी है, जो सभा में उपस्थित लोग हैं उन पर भरोसा किए बैठी है। अच्छा, जब उसने दोनों हाथ छोड़ दिए हैं तो मैं तुरंत उपस्थित हो गया, मैंने उसको नग्न होने दिया, वस्त्र खींचता चल, दुशासन कितना खींच सकता है तू? तो द्रौपदी ने कहा ठीक है, बात तुम्हारी ठीक है, परंतु लेट तो आए हो। अब भगवान कहते हैं मामला गर्म हो गया है, इसको ठंडा किया जाए। तो उसे कहते हैं अच्छा ये बता, तूने मुझे पुकारा किन शब्दों से था? कहती मैंने कहा था हे गोपेश, हे गोपिका कांत, हे द्वारकावासीन, हे द्वारकाधीश, यही तो तू गलती कर गई। बोले क्या गलती कर दी? अरे मैं तो सर्वत्र हूं, सब जगह उपस्थित हूं, तेरे पास था, तू चरम चक्षुओं से देख नहीं सकती, अलग बात है, मैं तो तेरे साथ था। और तूने पुकारा किसे? द्वारकाधीश को। तो द्वारकाधीश को पुकारेगी तो द्वारका से ही तो आएगा वो, तो मैं यहां से पहले द्वारका गया, फिर द्वारका से लौट के आया, इसलिए देर हो गई। द्रौपदी कहती ये नहीं, ये मेरे को समझा के छोड़ेंगे, जानने वाले नहीं है। निष्कर्ष क्या है कि अनन्य चेता, आपके चिंतन में भगवान के सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए, अगर कोई और है तो आप उसको प्राप्त हो जाओगे। भगवान क्या कहते हैं, समस्त अवस्था में जो निरंतर मेरा स्मरण करता है और मृत्यु के अंतिम समय पे सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, मेरा स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तब अगर मैं उसका स्मरण ना करूं तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश कृतघ्न और कोई नहीं होगा, तब मैं उसका स्मरण करता हूं और उसे अपने धाम ले जाता हूं। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ प्रश्न करिए। यस, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस।
हाय सर, अगर आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो एक कब्जी ले सकते हैं, तो फिर कथा को यहीं पर विराम देंगे।
देखिए क्या है कि प्रेम होता है संबंध बनने से। मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हो, मेरा आपसे प्रेम कैसे होगा? मेरा प्रेम तभी होगा जब मैं आपको जान जाऊंगा। दिन ब दिन जैसे 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 जानता जाऊंगा वैसे वैसे प्रेम होता जाएगा। अब प्रेम बनाने का फार्मूला क्या है, अब छोटी सी 2 मिनट की कहानी सुना देता हूं आपको जाने से पहले।
हरे कृष्णा, जाइए नहीं आप लोग, जाइए नहीं आप लोग,
बहुत सुंदर कहानी है,
2 मिनट रुक जाइए।
उस कहानी से पता चलेगा कि प्रेम कैसे बनता। एक सास और बहू का झगड़ा है। सास बहू जो है आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। बहू चाहती है सास ना रहे, सास चाहती है बहू ना रहे, दोनों समाप्त हो जाए। एक महात्मा जी आए, उनके पास सब प्रश्नों के उत्तर हैं, सारे समस्याओं का हल है। तो बहू जो है फटाफट ती भांति पहुंच गई। महात्मा जी ने बोला, बेटा कैसे आई हो? बोली, मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, मैं बड़ा दुखी हूं उससे, क्या करूं, मार दूं क्या? कहती, मार दो, ये ले पुड़िया ले जा, सास को दूध में डाल के पिला दीजिए, सास मर जाएगी। अब कहने लगे, तेरे को बता, तेरा दुश्मन सास के तेरे सिवा सास का कोई दुश्मन है? बोली, नहीं। तो पुलिस तेरे को ले जाएगी, तो फांसी हो जाएगी। बोले, इस समस्या का हल बताओ। तो पुड़िया वापस कर दो, दूसरी पुड़िया ले जाओ। ये धीमा जहर है, आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा, 1 साल लगेगा, सास मर जाएगी, दूध में डाल के पिलाती रही हो रोज। 1 साल झेलना पड़ेगा सास को, मतलब 1 मिनट भी झेल सकती। अब 1 साल झेलने की बात करते, पर एक शर्त है कि 1 साल के बाद ही पकड़ी तू ही जाएगी, क्योंकि तेरे सिवा दुश्मन है नहीं। तो बोले, क्या करूं? पहले दुश्मन ही खत्म करो, उसका कहना मानो, सेवा करो, प्रेम करो, आगे पीछे घूमो, जो कहे वो करो, आदेश का पालन करो, बहस मत करो, हाँ, गो अहेड, सेवा। 1 साल खूब सेवा करी, बहस नहीं करी, झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं करी, ताने सहते रही, सब कहते रहे। 1 साल के बाद महात्मा जी के पास आई। महात्मा जी ने कहा, हाँ मिठाई लाई हो, तेरी सास मरने वाली है आज। रोने लग गई, तेरी सास को बचा लो। कभी मारने की बात करती, कभी बचाने की बात करती, क्या करेंगे, क्या करूं, बचा लो, क्यों बचा लो? मेरी सास मुझसे बहुत प्रेम करती, मेरे कहे बगैर चलती नहीं, जैसा मैं कहती हूं वैसा मान जाती, तुरंत कभी ताना नहीं कसा, कुछ नहीं कसा, बहुत ठीक है। तो सास का बहू के प्रति प्रेम डेवलप हुआ, भगवान का आपके प्रति प्रेम डेवलप होगा, मेरा आपके प्रति प्रेम डेवलप होगा, आपका मेरे प्रति प्रेम डेवलप होगा, जब आदान प्रदान होगा कि बहू ने सास की सेवा करी है, तो सास प्रसन्न हो गई, प्रेम बना। आप भगवान की सेवा करोगे तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, भगवान का आपसे संबंध स्थापित होगा, भगवान आपसे प्रेम करने लगेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। दैट इज वाई वी ऑलवेज एम्फेसाइज, भी सेवा है, सेवा करो। सेवा में एक कंडीशन है, एक स्टार लगा हुआ है, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, भगवान के आदेश के अनुसार। भगवान 3:31 श्लोक में यही बात कहते हैं, जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे आदेश का पालन करता है, वो कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता, वो मेरे धाम आ जाता। कंडीशंस अप्लाई, एक कंडीशन है कि भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी, भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है और श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी है, मजबूरी में सेवा नहीं करनी, वेस्टेड इंटरेस्ट से सेवा नहीं करनी कि मुझे क्या मिलेगा, नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए कई बार शब्द इस्तेमाल होता है कि भक्त जो है मुक्ति चाहता है कि भक्ति चाहता है, कि मुक्ति में भी चाहे आध्यात्मिक है, भगवान से कुछ चाहना है, भक्ति के अंदर चाहना नहीं है, सेवा है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि मैं भक्ति मुश्किल से देता हूं परंतु मुक्ति आसानी से दे देता हूं। तो समय हो गया है, नहीं तो मैं आपको अगली बार आऊंगा तो एक कथा और सुनाऊंगा, अब भी सुना सकता हूं कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटी अर्थात भक्त का संग करने से लाभ क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट। हम कहते हैं ना, भक्तों का संग करिए, भक्तों का संग करिए, भक्तों का संग करिए, तो उस संग से लाभ क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट यू गेट आउट ऑफ इट, क्या लाभ आप अर्पित, क्या अर्जित करते हैं, बताइए। अगली बार के लिए इसको रखते हैं, अभी आप सबको जो है प्रसाद ग्रहण करना होगा। कितने लोग जल्दी जाने के मूड में, प्रभु जी तो खड़े हैं। बहुत ही सुंदर बातें हैं, जब सुनेंगे आप तो आपको अल्टीमेटली अंदर से एक स्फूर्णा आएगी कि यस, मैं तो भी बहुत पीछे हूं, मुझे आगे चलना चाहिए। कि भक्त का संग जो है क्यों जरूरी है, और भगवान इसके बारे में, भगवान स्वयं कहते हैं ना, भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, इस बात का जानना आवश्यक है। हरे कृष्ण।